आज है 30 सितंबर दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। भारत ने कहा एक भारतीय हथियारबंद सैनिक ने की नियंत्रण रेखा पार, वापस लाने की हो रही है कोशिशें।
एक चंदू नामक फौजी है, सीमा पार करके चला गया है। उसके बाद में उसका जो बड़ा भाई है वो भी फौज में ही है, तो उसका मेरे को कॉल था कि योगेश ऐसा ऐसा हुआ है, बोले मुझे वहाँ से सेंटर से कॉल आ रहा बोले, और मेरे घर भी कॉल किया बोले।
भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे के बाद नियंत्रण रेखा के आर पार तनाव।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯਾਚਿਕਾ ਖਾਰਿਜ, ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ। ਇਹ ਸਭ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे सैन्य तनाव के चलते पंजाब में पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों से लोग सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। उन्हें डर है कि कहीं सीमा पार से फायरिंग ना शुरू हो जाए। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर DPS खरबंदा के मुताबिक जो लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं उनके लिए प्रशासन ने सीमा से 10 किलोमीटर दूर 31 रिलीफ कैंप्स बनाए हैं। बिहार में विदेशी शराब पर लगी रोक समाप्त हो गई है। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के जरिए लाए गए शराबबंदी कानून को खारिज कर दिया है।
पटना हाई कोर्ट ने विदेशी शराब की बिक्री और उपभोग पर लगी रोक को अवैध करार दिया है। बिहार सरकार ने 5 अप्रैल को यह रोक लगाई थी। विदेशी शराब निर्माताओं, रेस्टोरेंट और बार मालिकों के साथ साथ कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए बीते दिनों कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
पटना हाईकोर्ट के फैसले के बारे में बता रहे थे इकबाल अहमद। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमरीका सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए जिहादियों के गुट को बचा रहा है। सर्गेई लेवरोव ने कहा कि अमरीका ने ताकतवर गुट जबाद फतेह अल शाम, जो पहले नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था, और कई चरमपंथी गुटों को उदारवादी गुटों से अलग करने का अपना वादा तोड़ा है। इसी वजह से युद्ध विराम की उम्मीदों में अड़ंगे आए। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि अमरीका नुसरा को बचाना चाहता है, जिससे आगे चलकर संघर्ष में उसे इस्तेमाल कर सके। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटार्टे ने अपने देश में ड्रग्स के खिलाफ युद्ध की तुलना हिटलर की नाजियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से की है, जिसकी यहूदी समुदाय ने निंदा की है। डुटार्टे ने कहा है कि हिटलर ने 30 लाख नाजियों को मारा था, उसी तरह उन्होंने भी नशा करने वालों और नशा बेचने वालों को खत्म करने की तैयारी की है। डुटार्टे का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से ही देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। बुल्गारिया की संसद ने सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के नकाब पहनने पर पाबंदी लगा दी है। इस कानून के तहत वो नकाब आते हैं जिनमें सिर्फ आंखें नजर आती हैं, और वो बुरके जो पूरे चेहरे को ढक देते हैं। नकाब को बुल्गारिया के उन मुस्लिम पारंपरिक पोशाकों में नहीं माना जाता जो 70 लाख की आबादी वाले मुल्क का 10% हिस्सा है। नकाब सिर्फ छोटे से रोमा समुदाय की 2 दर्जन महिलाएं पहनती हैं। फ्रांस और बेल्जियम पहले ही नकाब पर पाबंदी लगा चुके हैं। सीरिया के अलेप्पो शहर में उत्तरी इलाके से कई भीषण संघर्ष की खबरें आई हैं। सरकार समर्थित सेना का कहना है कि उन्होंने किंदी अस्पताल क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन विद्रोहियों ने इसका खंडन किया है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। श्रोताओं, आज शुक्रवार है और आपको ज़रूर विवेचना का इंतज़ार होगा, लेकिन आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान से आ रही खबरों के चलते हम आपको मशहूर संगीतकार SD बर्मन पर विवेचना नहीं सुनवा पा रहे हैं। इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप SD बर्मन पर रिहान फजल की विवेचना परसों यानी इतवार को दिन भर में सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, सुनिएगा ज़रूर। और अब बात भारत पाकिस्तान की। भारतीय सेना के नियंत्रण रेखा के साथ लगे इलाकों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के दावों के बाद ये देखा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के आर पार के गांवों में तनाव है। वहीं भारत का कहना है कि उसका एक हथियारबंद सैनिक नियंत्रण रेखा पार कर गया है और उसे भारत वापस लाने की पूरी कोशिशें कर रहा है। इन सभी खबरों पर तफसील से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नवाज शरीफ ने सीमा पार गोलीबारी की निंदा की। आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे से को इनकार किया था। मैंने आज हुई कैबिनेट की बैठक के बारे में इस्लामाबाद फोन कर हारून रशीद से पूरी जानकारी मांगी।
देखें, वजीर आजम नवाज शरीफ ने इसकी सदारत की और ये पहले से तय मीटिंग थी। ये जो इंडिया ने कल कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक किया उसके बाद नहीं बुलाई गई, तो मामूल की एक कैबिनेट मीटिंग थी जो उन्होंने प्लान की हुई थी। अपनी न्यूयॉर्क यात्रा से वापसी पर उन्होंने अपनी कैबिनेट मेंबर्स को ब्रीफ करना था कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने क्या किया। तो जो बयान, काफ़ी लंबा बयान इस बैठक के बाद जारी हुआ है सरकारी तौर पर, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। वही बातें हैं जो पाकिस्तान पहले भी कश्मीर के मुद्दे पर और अफगानिस्तान के साथ जो तनाव चल रहा है उसके बारे में करता रहा है, और अब भी कह रहा है कि हम जो कश्मीर का मसला है वो सिर्फ ख्वाहिशों से दूर नहीं, ख़त्म नहीं हो सकता, के लिए इकदाम करने होंगे और पाकिस्तान जो है ये मुद्दा इंटरनेशनल सतह पर उठाता रहेगा। और साथ में ये भी कि जो कल क्रॉस फायरिंग की कोशिश की भारत ने, उसकी भी मजम्मत की है और कहा है कि इससे खत्ते के हालात जो हैं वो ख़राब होंगे, और पाकिस्तान और ख़ासकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तो चाहते थे कि इस खत्ते में हम हालात की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें, लेकिन लगता है कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि शायद भारत को ये नहीं चाहिए।
जी, भारतीय फौजी के जो सरहद पार जाने की खबरें आ रही हैं, इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई बयान आया है?
जी, हालांकि इंडिया की तरफ से सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि हुई है कि वो पाकिस्तान के पास है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। हालांकि काफ़ी यहाँ पर मीडिया ने भी इसे उठाया और शाया किया और छापा है, लेकिन जो सेना है वो बिल्कुल खामोश है उस पर। जो एक कंफर्मेशन अगर आप उसे कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान की जो यूनाइटेड नेशंस में राजदूत हैं मलीहा लोधी, उन्होंने अल जजीरा टीवी चैनल के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान के पास एक भारतीय सैनिक जो है वो है। अब ये नहीं पता, भारत तो कह रहा है कि उनके साथ इसकी वापसी के लिए बातचीत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार या सेना ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सोमवार को संसदीय दलों की बैठक और फिर संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का भी फैसला किया है। ये थे हारून रशीद। तो जैसा कि आपने हारून रशीद से भी सुना कि नियंत्रण रेखा पार कर गए भारतीय सैनिक पर पाकिस्तान की सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन भारतीय सैनिक चंदू बाबू लाल चौहान के नियंत्रण रेखा पार करके जाने पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सैनिक को वापस लाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। वहीं इस खबर के बाद महाराष्ट्र में इस सैनिक के गांव में मातम का माहौल है। धुले से संजय रमाकांत तिवारी की ये रिपोर्ट।
उत्तरी महाराष्ट्र में धुले शहर के करीब सैनिक चंदू चौहान का गांव बोरविहीर है, जिसकी आबादी करीब 3000 है। चंदू के लापता होने की खबर से उसकी नानी का देहांत हो गया, जिससे गाँव में शुक्रवार के दिन मातम का माहौल दिखा। पारिवारिक मित्र योगेश पाटिल का कहना है कि भारतीय सेना की ओर से कॉल आने पर चंदू के लापता होने की पुष्टि हुई थी।
सर, सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप पे भी माल की ये डिंगाई थी कि एक चंदू नामक फौजी है वो सीमा पार करके चला गया है। उसके बाद में उसका जो बड़ा भाई है वो भी फौज में ही है, तो उसका मेरे को कॉल था कि योगेश ऐसा ऐसा हुआ है, बोले मुझे वहाँ से सेंटर से कॉल आ रहा, बोले और मेरे घर भी कॉल किया बोले।
बताया जा रहा है कि पूंछ सेक्टर के टट्टापानी इलाके के पास LOC पर चंदू पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा पकड़ा गया। योगेश के अनुसार पूरा गांव आज चंदू को याद कर रहा है और उसकी रिहाई के लिए दुआएं भी दे रहा है।
वो पालने में ही था तब उसके माता पिता गुजर गए, नाना और नानी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। दोनों तीनों को, इसका बड़ा भाई जो मेरा क्लासमेट है और छोटी बहन, दो नंबर बहन है, तीन नंबर ए था चंदू।
इन गाँव वालों की अब एक ही प्रार्थना है कि चंदू सकुशल वापस लौट आए। धुले से BBC हिंदी के लिए संजय रमाकांत तिवारी।
अब गांव वालों की यही प्रार्थना है कि भारतीय सैनिक चंदू बाबूलाल चौहान सुरक्षित वापस लौट आए। ये थे संजय तिवारी। सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय दावों को अब 30 घंटों से भी ज़्यादा समय हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस कथित ऑपरेशन की खबरें हर जगह छाई हुई हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी बहस शुरू होती दिख रही है कि अब आगे का रास्ता क्या है, यही जानने की कोशिश की नितिन श्रीवास्तव ने रक्षा मामलों के जानकार कोमोडोर उदय भास्कर से।
मेरा असेसमेंट यही है कि जिस प्रकार से अभी विलेजेस को इवैक्यूएट किया है, अगर आप ये ऑपरेशन का जो आर्क या स्पेक्ट्रम देखेंगे, ये करीब 220 किलोमीटर की एक आर्क है, यानी कि जम्मू से लेके बिल्कुल आप ऊपर कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। और अभी जो इवैक्यूएशन ऑफ विलेजेस हुआ है, जो भी मैंने मीडिया में देखा है, पंजाब के भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां से इवैक्यूएशन हुआ है। तो अर्थात यही है कि एक हम एलओसी की बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे आम तौर पे एक्सचेंज ऑफ ऑर्डिनेंस रोज होता है या इट्स अ वेरी रेगुलर प्रैक्टिस। पर आईबी के पास अगर आप आते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां पे अगर किसी प्रकार का हरकत होगा तो मैं समझूंगा कि वो काफ़ी सीरियस है, यानी कि फिर हम एक प्रकार से जंग के दिशा में जा रहे हैं। तो अगर भारत के योजक ने गांव को इवैक्यूएट किया है तो ये एक अच्छी बात है कि हम ह्यूमन सिक्योरिटी को बहुत अहमियत देते हैं और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है। पर इसलिए यहाँ पे जिस प्रकार से भारत ने इस ऑपरेशन को डिस्क्राइब किया है, इसकी जो वर्णन है, ये एक काफ़ी ठोस कदम था दहशतगर्दी के खिलाफ।
जो आगे की सूरत हाल है, एक तरह से बॉर्डर पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ट्रूप मोबिलाइजेशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट्स बहुत सख्त रवैया अख्तियार करने की बात कर रही हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उस पर अभी भी कम बात हो रही है कि सबकी अपनी एक डोमेस्टिक ऑडियंस है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑडियंस है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की है। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इन दोनों में कितना मेल होता देख रहे हैं आप?
नहीं, मैं यही कहूँगा साहब कि एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शन ज़रूर है। हम भारत के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं कि जब उरी का अटैक हुआ था, ये सबसे पहले एक काफ़ी बड़ा धक्का था, क्योंकि जब से भारतीय फौज को JNK में डिप्लॉय किया गया है, ये शायद BBC ने भी रिपोर्ट किया था कि दिस इज़ द लार्जेस्ट लॉस ऑफ लाइफ इन अ सिंगल इंसिडेंट। 18 आपके जवान या सोल्जर्स एक इस प्रकार का घटना में अगर वो मर जाते हैं या डेथ हो जाता है तो इट्स अ वेरी बिग ऑपरेशनल सॉर्ट ऑफ सेटबैक। तो उसके बाद आपको याद होगा कि इंडिया के अंदर जो भावना थी कि क्या नरेंद्र मोदी भी उसी प्रकार का मार्ग अपनाएंगे जो कि उन्होंने मनमोहन सिंह के साहब के बारे में कहा था या UPA 1 और 2 के बारे में कहा था कि वो भी भाषण देंगे पर कोई सख्त या ठोस कदम नहीं उठाएंगे। तो ये दबाव ज़रूर बढ़ रहा था एक प्रकार से।
दबाव बढ़ रहा था, ये थे कोमोडोर उदय भास्कर, उनसे बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव, और इसी मुद्दे पर होगा कल शाम इंडिया बोल।
BBC इंडिया बोल।
नियंत्रण रेखा से पार जाकर चरमपंथियों को मारने का सेना ने किया दावा। क्या 3 दशकों से चले आ रहे कश्मीरी चरमपंथ को मिल गया जवाब? क्या अब नहीं होंगे भारत पर चरमपंथी हमले? इस बार इंडिया बोल में शनिवार 1 अक्टूबर को होगी इसी पर चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर शाम 7:30 बजे।
BBC इंडिया बोल।
श्रोताओं, कल शाम मेरे साथ इंडिया बोल में भाग लेना ना भूलिएगा। और अब बात भारत प्रशासित कश्मीर पर नियंत्रण रेखा और जम्मू में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रह रहे लोगों की। प्रशासन ने जम्मू सीमावर्ती इलाकों में स्कूलों को खाली करा दिया है ताकि उन्हें शिविरों में तब्दील किया जा सके, और इलाकों को भी खाली करवाया जा रहा है। मैंने इस बारे में जानकारी के लिए श्रीनगर फोन कर रियाज मसरूर से बात की।
सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में है, क्योंकि जम्मू में जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर कहती है और पाकिस्तान का दावा है कि वो वर्किंग बाउंड्री है, उसमें कई क्षेत्र आते हैं, खासतौर से कठुआ, उधमपुर और RS-पोरा जिलों में वो क्षेत्र सारे आते हैं। और प्रशासन ने फैसला किया है कि कई क्षेत्रों में जिसमें कोई 12 क्षेत्र आते हैं, अखनूर, बिश्ना, झोड़ियाँ, RS-पोरा और दूसरे क्षेत्रों में स्कूलों को बंद किया गया है। हमने प्रशासन से बात की, उनका कहना है स्कूलों को इसलिए बंद किया गया है कि किसी भी इवेंचुअलिटी के वक्त जो बॉर्डर के करीब रहते हैं लोग, उनको राहत शिविरों में शिफ्ट करना पड़ेगा और स्कूलों को जो है वो राहत शिविरों में कॉन्वर्ट किया जाएगा। तो आज जो बात हुई हमारी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जम्मू के सतविंदर सिंह, उन्होंने बताया कि करीब 20,000 लोग जो हैं उनको निकाला गया है जीरो लाइन से, क्योंकि अगर पाकिस्तान से रिएक्शन होता है तो वो सीधे सीधे प्रभावित होंगे। तो जहां तक कश्मीर घाटी का ताल्लुक है तो कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा टेंशन जो है इस वक्त उरी में है। हालांकि कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन उड़ी के शहरियों का कहना है कि वो बहुत ही डरे हुए हैं, और उड़ी में प्रशासन का कहना है कि अभी तक तो नियंत्रण रेखा पे काफी शांति बनी हुई है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात बरतें और जीरो लाइन के पास जो है किसी भी तरह की कोई खेती बाड़ी न करें, जानवरों के साथ वहां न जाएं और पीछे की तरफ जाएं। तो हमने सुना कि कई लोग जो है सैकड़ों लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह से कश्मीर में तो प्रशासन का कहना है कि किसी तरह की कोई मिलिट्री टेंशन बॉर्डर पे नहीं है, लेकिन जम्मू क्षेत्र में चूंकि सेना को भी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है और सीधे सीधे ऑर्डर निकाला गया है कि जो नियंत्रण रेखा या बॉर्डर के करीब लोग हैं उनको पीछे हटना चाहिए।
जी, वहीं ये खबरें आ रही हैं कि उड़ी में जो हमला हुआ था सेना के कैंप में, उसमें 18 जवान मारे गए थे, अब एक और जवान के मारे जाने की खबरें आ रही हैं।
जी हाँ, बिल्कुल, सेना ने तो इसमें खबरें तो ये आ रही हैं कि जो घायल हुए थे उनमें से दो की मौत हो गई है, लेकिन सिर्फ एक की पुष्टि सेना ने कर दी है। तो इस तरह से सरकारी तौर पर 19 जवानों की मृत्यु हो गई है इस हमले में, लेकिन अभी ऐसी खबरें भी आ रही जिनकी पुष्टि नहीं हुई है सेना या सरकार के स्तर पर, जिसमें कहा गया कि दो घायल जवानों की मौत हो गई है, तो कुल मिलाकर 20 जवान इसमें मारे गए हैं, लेकिन सिर्फ 19 मौतों की जो है वो पुष्टि हुई।
उड़ी में हुए सैन्य कैंप पर हुए हमले के बाद मारे गए सैनिकों की संख्या हुई 19, ये थे रियाज मसरूर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों का क्या हाल है, यही जानने के लिए उर्दू सेवा के सहयोगी औरंगजेब जलाल बटल जिले के गांव पहुंचे। मैंने उनसे वहां के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी मांगी।
मैं जो इस वक्त बटल सेक्टर के बटल ही बाजार में मौजूद हूँ, बिल्कुल एलओसी के ऊपर है, यानी मेरे बिल्कुल सामने मुझे इस वक्त जो है ना अपनों अफवाज की जो पोस्टें हैं वो मुझे नजर आ रही हैं और बिल्कुल उनके सामने मौजूद हूँ। बटल सेक्टर है बुनियादी तौर पे, हमारा जिला पुंछ है, रावलाकोट, ये उसका हिस्सा है यानी कि, और ये पूरा इलाका जो है ये दूसरे यानी जो सरहद से दूसरे जानब भी पुंछ आता है जहाँ भारत के इंतजाम कश्मीर में, और यहाँ जो एक सड़क है तित्री नोट जाती है जहाँ से दोनों अतराफ जो है यानी बस सर्विस भी चलती है, तजारत भी होती है लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ। जहाँ तक आपने हालात की बात की है तो आज हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ जो इससे पहले बड़ा बाजार है जो हजीरा बाजार है, तो ये बाजार आज खुले थे मामूल के मुताबिक जो है। यहाँ एक छोटा सा एक साइड पे यानी के नाला भी है जहाँ से मैं अभी गुजर के आया हूँ, तो लोग मौजूद हैं, कुछ कपड़े धो रहे हैं, शादी की तकरीब भी मैंने अभी देखी है कि लोग शादी की तकरीब में जा रहे हैं, एक शादी में। हालात थोड़े से मामूल के मुताबिक हैं, आज हालात थोड़े बेहतर हैं। जी
जी, हालात बेहतर हैं, और वहाँ पर जो लोग हैं उनका क्या कहना है?
लोगों से जो मेरी बात हुई है मुख्तलिफ लोगों से है, क्योंकि इन लोगों का यहाँ कहना है कि हमने बहुत ज्यादा यानी एक दौर के अंदर जो यानी जहाँ आज क्योंकि सीज फायर का जो दौर चल रहा था 2003 से कबल, तो सीज फायर से पहले जो है इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ दोनों देशों के दरमियान जो है वो होने वाली क्रॉस एलओसी फायरिंग की जद में रहते रहे हैं और इन्हें बड़ी मसाइल का सामना करना पड़ता रहा है। और जो अभी टेंशन जो शुरू हुई है, इस टेंशन ने उनको वही यादें जो है वो ताज़ा कर दी हैं और ये कहते हैं कि हमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। इनके जहनों में अब भी खौफ है कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हम दोबारा जो है उसी पिछले दौर में जो है वो चले जाएं जिसमें इनको बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्टीज मुसीबतें परेशानियां देखना पड़ती थी। तो इनका ये भी कहना है कि दोनों देशों से इनकी गुजारिश भी यही है कि क्योंकि जो युद्ध है या जंग है उससे कहीं भी दुनिया में जो है मसाइल प्रॉब्लम हल नहीं होते हैं, बातचीत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बड़ा जोर दे रहे हैं ये लोग, बातचीत होनी चाहिए ना कि मसाइल को बंदूक की नोक के ऊपर हल किया जाए। मैंने यहाँ के बटल सेक्टर के गांव में रहने वाले कुछ लोगों से बात की।
तो ये परसों सुबह के टाइम फजर के टाइम जो है ना वो एक शेलिंग हुई है, हैवी शेलिंग हुई है, तो वो तो एक कंडीशंस यहाँ पे चूंकि एलओसी पे चलती रहती है, लेकिन चूंकि काफी टाइम के बाद ये हुआ ना आफ्टर 13-14 ईयर, तो जाहिर है जो यंग जनरेशन थी जो 15-20 साल के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम ये देख रहे थे, ओल्ड पीपल हैं उनको तो यूज टू थे, तो उनको थोड़ा सा हुआ, तो बाकी जो लोग हैं वो तो ऐसा अपनी जो उनकी लाइफ है वो चल रही है, लेकिन ये है जरूर थोड़े से वो लोग मतलब अलर्ट जरूर है।
मुझे नहीं समझ आई कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, जहाँ तक मैंने सुना है तो उसके मुताबिक तो यहाँ पे कुछ 9 बजे तक गोले वगैरह तो लगते रहे, उसके अलावा हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये है कि कल लोगों में काफी जो बिल्कुल कंट्रोल लाइन के करीब रहते हैं सामने रहते हैं उनको परेशानी थी, काफी खौफ और आस था कि शायद बहुत बड़े पैमाने पे जंग होगी, लेकिन आज काफी बेहतर है, अब हम यहाँ पे कोई ऐसा खौफ महसूस नहीं कर रहे। रूटीन जिस तरह की होती है इसी तरह मामला जिंदगी है वो रूटीन की तरफ बहाल हो गई है।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रह रहे बटल के लोगों का कहना है कि हालात सामान्य है। ये थे औरंगजेब जलाल। इधर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे भारतीय राज्य पंजाब के अटारी और अजनाला सेक्टर के गांवों को रविंदर सिंह रॉबिन ने उधर वहां दौरा किया। उन सेक्टरों में तनाव तो कम है लेकिन काफ़ी कम संख्या में लोग पलायन भी कर रहे हैं। साथ ही सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के दावों का वो समर्थन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ अटारी से रविंदर सिंह रॉबिन।
भारत पाकिस्तान के दरमियान चल रहे तनाव के चलते पंजाब के सरहदी इलाकों से चाहे कुछ लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर गए हैं किंतु सीमा के गांवों पर रहने वाले लोग भारतीय सेना द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना कर रहे हैं। उनका मानना है कि भारतीय सेना को यह कदम बहुत पहले उठा देना चाहिए था। आज जब हमारी टीम ने सीमा पर स्थित लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे तो पाया कि कुछ लोगों ने अपने बच्चों और औरतों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया है। घर बाहर छोड़ने का दुख तो ज़रूर नज़र आया परंतु गाँव वासियों ने भारतीय फौज द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को ठीक ठहराया। हमसे बात करते हुए गांव धनोई कला के गुरमीत सिंह कहते हैं,
साढ़े पिंड जी लौसमेंट पहला ठाणे वाले ने तलाह दी थी SHO साहब ने भी इतों पिंड चो 10 किलोमीटर तक दूर चल जाओ। उन्हें कहा भी लड़ाई का खतरा है भी दुश्मन का डर है इस वेले पूरा ज्यादा पाकिस्तान वालों। साढ़े पिंड च माहौल बहुत ज्यादा खिल रहा पाया इस वे कोई भजा जाता कोई कुछ कोई संद नहीं लगता कोई किस तरह जान डा कोई किस तरह कर दिया पूरी मुसीबत है जी इस वे पिंड गलिया च जाके वेखो की हालत लोगों की होन डी है।
पंजाब की भारत पाक सीमा के साथ लगते 10 किलोमीटर के एरिए में रह रहे लोगों को अलर्ट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इंतजामिया की ओर से लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए कहा गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर DPS खरबंदा ने BBC को बताया,
देखिए ऐसा जी कि हमने 35 रिलीफ कैंप बनाए हैं और 35 रिलीफ कैंप में ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर है, लंगर का फैसिलिटी है, फ्लड लाइट्स हैं, दरिया हैं, कंबल हैं और सैनिटेशन है। ये सारी प्रबंध हमने वहाँ कर दिए हैं। किसी भी एक भी बंदे को हमने हरास नहीं होने देंगे। तकरीबन 300 गांव हैं जो 10 किलोमीटर की पट्टी के में आते हैं। लोग तो लोगों ने सिर्फ लेडीज और बच्चों को शिफ्ट सेफ प्लेस में किया और लोग वहाँ डिटरमिन बड़े हर्ते बैठे हैं। कोई किसी को समस्या को नहीं आने देते। वो कहते हैं हम बैठे हैं तो आर्मी के हम बैक सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान के दांत हम खट्टे करेंगे।
उधर पंजाब सरकार ने स्थिति पर नियंत्रित रखने के लिए अपने 6 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है और पंजाब सरकार के मंत्री और MLA बॉर्डर के गांव का दौरा कर रहे हैं। अटारी सेक्टर और खेमकरन सेक्टर के गांव का दौरा कर रहे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर विक्रम सिंह मजीठिया कहते हैं,
Yesterday the agenda was only to save people from if just in case there is an attack.
कल का एजेंडा था कि किसी की जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये पहला एजेंडा था। और आज का एजेंडा है कि हम जमीनी स्तर पर जो काम हो रहा है उसकी सीमा से लगे गांवों में जाकर निगरानी कर रहे हैं।
सरकार ने रावी नदी के पार गए किसानों और लोगों की घर वापसी के लिए अस्थायी तौर पर डेरा बाबा नानक बॉर्डर पर एक पुल का निर्माण भी करवाया है। हालांकि तार के पार जो जमीन है वहां पे किसानों को जाने के लिए मना कर दिया गया है। यह पहली बार नहीं है कि सीमा पर रह रहे लोगों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। देश की आजादी से लेकर अब तक कई बार इनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। अब इस बार दो मुल्कों के दरमियान हुए इस तनाव में कितनी देर उनको घर से दूर रहना पड़ेगा यह समय ही बताएगा।
ये थी रविंदर सिंह रॉबिन की अटारी से रिपोर्ट। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे पाकिस्तान के सियालकोट के इलाकों का दौरा कर रहे शहजाद मलिक का कहना है कि यहाँ रह रहे लोगों को सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं कहा गया है लेकिन दहशत में रह रहे ये लोग रात में अपना घर छोड़कर चले जाते हैं और दिन में वापस लौट आते हैं। हमारी सहयोगी दिव्या आर्या ने शहजाद मलिक से इस बारे में बात की।
जी, मैं इस वक्त शकरगढ़ का इलाका है और यहीं से ना सिर्फ वर्किंग बाउंड्री शुरू होती है और दूसरी साइड से इंटरनेशनल बॉर्डर भी शुरू होता है। उसमें 120 के करीब देहात बताए जाते हैं कि वो वर्किंग बाउंड्री के साथ हैं, जिनमें से 22 के करीब ऐसे देहात हैं जो बिल्कुल इंडियन वर्किंग बाउंड्री के बिल्कुल साथ हैं। अपनी खुद ही इन्होंने ये स्मेल किया है कि भारत की तरफ से इंडिया की तरफ से कोई शेलिंग ना हो जाए तो इनके ये इलाके जो है वो खाली कर लिए गए हैं या करवा लिए गए हैं।
यानी पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई फॉर्मल नोटिस नहीं जारी किया गया है, अपने आप गांव वालों ने ये तय किया है और वो भी 122 में से करीबन 22 गांव आपने कहा।
जी बिल्कुल, इनमें से कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनमें लोग दिन के वक्त तो अपने घरों में ही रहते हैं लेकिन पूरी शाम होती है सूरज ढलने के बाद ये लोग अपने करीबी रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं और ये रूटीन उनकी ये दो तीन दिन से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन जो है वो ज्यादा हुई है उसके बाद इन लोगों ने ये रूटीन बनाई है। इससे पहले इन लोगों का कहना था कि तकरीबन एक साल तक वो यहाँ पर बड़े पुरान थे और अपने घरों में ही रह रहे थे।
और लोगों में वहाँ क्या चिंता है कि दोबारा भारत की तरफ से कोई हमला होगा, क्योंकि पाकिस्तान सरकार तो पहले हमले को ही कह रही है कि गलत जानकारी है और ऐसा हमला हुआ ही नहीं।
देखिए यहाँ पर जिन इलाकों से मैं होके आया हूँ वहाँ पर जाहिर है कि लोगों के चेहरों पर एक परेशानी का आलम तो है कि कहीं इनको उनको डर ये है कि कहीं दोनों मुल्कों के दरमियान जंग ना हो जाए और क्रॉस फायरिंग ना हो जाए। इस चीज को देखते हुए तो सिक्योरिटी मेजर्स यानी कि प्रीकॉशनरी मेजर्स वो लेते हुए वो शाम को अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं या जिन लोगों के यहाँ पर कोई रिलेटिव नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो वो खाली जगह पे अपने बच्चों को ले जाते हैं और वहीं पर रात गुजारते हैं और दिन के वक्त दोबारा अपने घरों को वापस आ जाते हैं।
क्या इन इलाकों में कोई सेना की तैनाती भी ज्यादा हुई है, क्या डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है?
यहाँ पर बहुत से ऐसी चीजें हैं, बंकर वगैरह बने हुए हैं, सारी चीजें लगा कि हर मुल्क को हाँ क्या अपनी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम करे, तो यहाँ पर भी उन्होंने यही इंतजाम तो किए हुए हैं, लेकिन बाजार एज सच कोई आर्मी की डिप्लॉयमेंट जो है वो बाजार सड़कों पे या गली मोहल्लों में घूमती हुई नजर नहीं आती।
भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद लोग हैं परेशान, ये थे सियालकोट से शहजाद मलिक। और अब रुख करते हैं भारत के राज्य बिहार का। सिवान की अदालत में आत्मसमर्पण के बाद जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन को दोबारा जेल भेज दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाहबुद्दीन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पूरी जानकारी के साथ पटना से मनीष चांडिल्य।
सुप्रीम कोर्ट ने आज राजीव रोशन हत्या मामले में शाहबुद्दीन को मिली जमानत खारिज कर दी। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन ने सिवान की अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया है। शाहबुद्दीन के खिलाफ मृतक राजीव रोशन के पिता चंदा बाबू के वकील प्रशांत भूषण ने आज के फैसले के बारे में बताया।
कोर्ट ने सिर्फ इतना अपना ऑपरेटिव आदेश पढ़कर सुनाया था कि उसकी बेल का जो ऑर्डर है उसको रद्द किया जाता है, बिहार सरकार को आदेश दिया जाता है कि तुरंत उसको वापस जेल में भेजा जाए और उसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कंक्लूड किया।
आत्मसमर्पण से पहले शाहबुद्दीन ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, मुझे परवाह नहीं लोग क्या कहते हैं। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधा।
जैसे टीवी पर आदेश सुना, लोगों ने बताया, सुना भी नहीं, लोगों ने बताया, मैं उस आदेश का सम्मान करते हुए न्यायालय का समर्थन किया। लोग क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं स्पेशली, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा न्यायालय का सम्मान किया है और आज भी उसी कड़ी में सम्मान करते हुए, जैसे आदेश अभी आदेश आया भी नहीं, टीवी पर न्यूज मिला, जुम्मा की नमाज पढ़े और सीधा चले आए।
एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद शाहबुद्दीन इस महीने की 10 तारीख को जेल से बाहर आए थे। उनकी रिहाई के लिए सूबे की नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्ष सड़कों पर उतर आया था। अदालत के आज के फैसले का स्वागत करते हुए बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रधान प्रवक्ता विनोद नारायण झा ने कहा,
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। आज निर्णय से ये प्रमाणित हो गया, भारत में कानून के आगे कोई बड़ा और छोटा नहीं है। हम लोगों का कहना था जनता सपा की सरकार मिल गई थी शाहबुद्दीन से, इसीलिए उस मुकदमे में कमजोर वकील रखा गया हाईकोर्ट में और उनको बेल लेने का मौका मिला। आज चंदा बाबू को न्याय मिला, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है।
वहीं चंदा बाबू ने कहा है कि कोर्ट के आज के फैसले से उन्हें सुकून मिला है।
सुकून तो मिला है, लेकिन जो है आत्मा को शांति जैसी हमको तब मिलेगी जबकि दो बातें बोल रहे हैं, या तो जो भी पेशेंट है उनका ट्रायल जो है जल्दी करा दिया जाए और उनको जो है बिहार के किसी भी जेल में न रख सके और बिहार से बाहर आजीवन जेल में रहे
जमानत पर रिहा होने के बाद शाहबुद्दीन ने लालू को अपना नेता बताया था और कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों की वजह से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आज उनके फिर से जेल जाने पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई मंत्री तक कोई प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। वहीं जदयू की ओर से कहा गया है कि शाहबुद्दीन की गिरफ्तारी से नीतीश कुमार की इस बात की संतुष्टि हुई है कि जो डॉन है वो जेल के अंदर रहेगा। मनीष चांडिल्य, BBC पटना।
इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। इसराइल के पूर्व राष्ट्रपति शिमोन पेरेज का यरूशलम में हो रहा है अंतिम संस्कार, और बिहार में विदेशी शराब पर लगी रोक हटाई गई, इस पर करेंगे घटना चक्र में चर्चा 9:30 बजे। आपसे दोबारा होगी मुलाकात 9:30 बजे घटना चक्र में, तब तक दीजिए इजाज़त।